हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 402 रागिनी डॉक्टर के साथ वहां से चेकअप के लिए चली गई है और अक्षत वहां पर बैठा हुआ उसके वापस आने का वेट कर रहा है। ये सब उसको बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा है, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन रागिनी के वहां से जाते ही अक्षत के चेहरे पर साफ नजर आने लगा कि वो जबरदस्ती ही यहां पर आकर बैठा हुआ है। वहीं बैठे हुए उसने एक नज़र वहीं डॉक्टर के रूम में कोने में बैठे हुए अजय पर डाली, जिसने एकदम किसी कंपाउंडर और डॉक्टर के हेल्पर की तरह कपड़े पहने हुए हैं और चेहरे को भी मास्क से छुपाया हुआ है। अक्षत ने जब आंख से उसे इशारा किया तो फिर वो भी वहां से उठकर डॉक्टर की तरफ बढ़ा और अजय जैसे ही आगे आया उसने सुना रागिनी डॉक्टर से बोल रही थी, प्लीज डॉक्टर, आपको मेरे लिए ये काम करना होगा और इसके बदले में मैं आपको जितना चाहे उतना पैसे दे सकती हूँ, लेकिन बस आपको झूठी रिपोर्ट तैयार करनी होगी और जैसा वो चाहता है आपकी बस यही बोलना है कि बेबी हेल्थी है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रागिनी की ये बात सुनकर अजय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो इतनी ज्यादा मत करेगी कि उनके बताए हुए डॉक्टर से भी इस तरह डील करने की कोशिश करेगी। और डॉक्टर को उन दोनों ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था, तो डॉक्टर ने रागिनी से और कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, ओके, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये तो झूठ है और धोखा भी, एक ना एक दिन तो सामने आ जाएगा। डॉक्टर ने जैसे ही ये बात बोली, थोड़ी दूर पर पर्दे के पीछे छिपे हुए अजय ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उन दोनों की बातों को रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन वो थोड़ी दूर पर है तो उसे लगा शायद ही आवाज़ नहीं आएगी, तो वहां से थोड़ा सा आगे आया और अपना मोबाइल पर हाथ में उसने छुपा कर पकड़ लिया और वो उसे लेकर अंदर आया। उसे वहां पर देखकर रागिनी एकदम चुप हो गई। वो अजय को पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर भी डॉक्टर के कंपाउंडर के सामने भी ये बात नहीं करना चाहती थी और चुप होकर उसने एकदम भोली सी शक्ल बना ली। जबकि अजय वहां पर आया और उसने डॉक्टर की तरफ बढ़ते हुए कहा, डू यू नीड एनीथिंग डॉक्टर? एक तरह से वो डॉक्टर की हेल्प करने के पूछने के बहाने ही वहां पर आया था, तो डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे ये थोड़ा बहुत सामान लाकर दो। उसके बाद डॉक्टर ने उसे दो तीन चीजें लाने के लिए बोला, तो अजय ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और वहीं जहां पर रागिनी बैठकर डॉक्टर से बात कर रही थी अपने मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके वो अपना मोबाइल फोन वहां पर ही इस तरह से रखकर चला गया, जिससे कि उनकी बातें भी रिकॉर्ड हो जाएं और उसकी शक्ल भी कैमरा में दिख जाए। उसके मोबाइल फोन रखने पर रागिनी ने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अपनी ही प्रॉब्लम में परेशान है, और उसके वहां से जाते ही डॉक्टर की तरफ देखते हुए उसने कहा, डॉक्टर प्लीज प्लीज आप अभी मेरा साथ दे दीजिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं अपने बॉयफ्रेंड को खोना नहीं चाहती, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और ये बच्चा ही हमारी नज़दीकियाँ बढ़ाने का रीजन है, इसलिए प्लीज उसकी उम्मीद मत दूर कीजिए। और वो रागिनी ने झूठा बहाना बनाते हुए कहा, तो डॉक्टर ने उसकी तरफ देखकर उसे समझाते हुए कहा, लेकिन मैडम आप इस तरह से झूठी खुशी आखिर किसी को कितने दिन तक दे पाएंगी? वो भी तो काफी समझदार लगते हैं, जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा। और आपने कितने दिन से उन्हें ये झूठ बोल रखा है? डॉक्टर ने रागिनी की तरफ देखते हुए पूछा, तो रागिनी का चेहरा मायूसी से लटक गया और उसने कहा, सॉरी डॉक्टर, बट मैंने अभी उसे दो तीन महीने पहले ही इस बारे में बताया है। रागिनी की ये बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, अच्छा, और कितने महीने आप ये नाटक कंटिन्यू करने वाली हैं? मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी ठीक है, आपको उन्हें सच बता देना चाहिए या फिर मैं ही बता दूंगा कि आप असल में प्रेग्नेंट नहीं हैं। इससे कम से कम उनको झूठी उम्मीद तो नहीं रह जाएंगी, और अगर वो आपको प्यार करते होंगे तो यकीन मानिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हो, वो आपको ऐसे ही प्यार करेंगे और आप बाद में भी तो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। डॉक्टर ने काफ़ी सहूलियत से उसे समझाया, लेकिन रागिनी भी समझने वाले मूड में नहीं थी। उसने जल्दी से डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर, आप प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मैं उसे बहुत जल्द इस बारे में बता दूंगी, अपने तरीके से समझा दूंगी, लेकिन अभी नहीं प्लीज़, रागिनी ने इस बार थोड़ी मिन्नतें करते हुए कहा। तो डॉक्टर ने भी धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, वैसे आप इतने बड़े डॉक्टर से झूठ बोल रही हो और बुलवा रही है, इसके लिए आपको कीमत भी चुकानी होगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर रागिनी ने कहा, ओके मैं तैयार हूँ, बताइए आपको कितने पैसे चाहिए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने इधर उधर देखा और फिर बोले, नहीं ऐसी बातें मैं यहाँ पर नहीं करता, आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मैं आपको मैसेज करूँगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर रागिनी ने उसे अपना मोबाइल नंबर बता दिया और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने ही वाले थे कि उससे पहले अजय वहाँ पर आया और उसने डॉक्टर को सारा सामान दिया और चुपचाप अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर वहाँ से चला गया और उसमें रिकॉर्ड हुई वीडियो भी उसने सेव कर दी। डॉक्टर वहां पर कुछ देर और रागिनी के साथ रुके रहे और फिर वापस उस जगह पर रागिनी के साथ आए जहां पर अक्षत बैठा हुआ उन दोनों का वेट कर रहा था। उसको देखते ही अक्षत ने भी अपना नाटक करना जारी रखा और वो उठकर खड़े होते हुए बोला, क्या हुआ डॉक्टर? मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा होने वाला बेबी दोनों ठीक है ना? उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अक्षत ने इस तरह से ये बात पूछी जैसे कि उसे रागिनी के बच्चे से भी ज्यादा फिक्र है। उसकी ऐसी बात सुनकर डॉक्टर और रागिनी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और रागिनी का चेहरा गिल्ट की वजह से लटक गया।
वो डॉक्टर से नजरें नहीं मिला पा रही थी और ना ही अक्षत की बात का जवाब दे पाई। तो डॉक्टर ने ही अक्षत की बात का जवाब देते हुए कहा, रिलैक्स मिस्टर कपूर, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, इट्स ऑल राइट। बोलते हुए डॉक्टर अपनी जगह पर आकर बैठ गए और उन्होंने कागज पर कुछ दवाइयां लिखकर अक्षत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये कुछ हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि थर्ड मंथ से ही लेने होते हैं, तो आपकी वाइफ को, सॉरी आपकी गर्लफ्रेंड को थर्ड मंथ लग चुका है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, लवली कपल हैं आप दोनों, शादी कब कर रहे हैं? मुझे भी बुलाइएगा शादी पर। डॉक्टर की बात सुनकर रागिनी ने हैरानी से उस डॉक्टर की तरफ देखा। उसे इन सारी बातों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बहुत जल्द ही, और आपको तो बुलाएंगे ही डॉक्टर, फेक स्माइल करते हुए अक्षत ने कहा। और फिर डॉक्टर से थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो रागिनी के साथ वहां से बाहर निकल गया। अक्षत की बात रागिनी के दिमाग में घूम रही थी, जो भी उसने डॉक्टर से कही और उससे रहा नहीं जा रहा, और वो तब से इस बारे में ही सोच रही है। वहां से बाहर निकालने के बाद उसे रहा नहीं गया, तो उसने अक्षत से पूछा, अक्षत सच में क्या तुमने अभी अभी जो कुछ भी डॉक्टर को कहा वो सब सच है? अक्षत बाहर निकलते ही अक्षत ने रागिनी का हाथ छोड़ दिया और अकेले ही वहां से आगे बढ़ने लगा। तो रागिनी उसके पीछे आती हुई बोली, लेकिन अक्षत उसकी बात सुनकर भी नहीं रुका और उसी तरह से आगे चलता रहा। उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा, क्या कहा मैंने डॉक्टर से, किस बारे में बोल रही हो तुम? वो एकदम अनजान बनता हुआ बोला। तो उसका जवाब सुनकर रागिनी खिसिया गई और बोली, सीरियसली तुम्हें याद नहीं अभी जो तुमने बोला था शादी के बारे में?
अक्षत ने गुस्से में पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन सी शादी, क्या बोल रही हो, और कैसे तुम ये किसी टीनेजर की तरह एक्साइटेड हो रही हो? तुम्हें पता है कि हम अभी शादी नहीं कर सकते? उसकी ये बात सुनकर रागिनी बहुत ही ज्यादा मायूस हो गई और उसका मुंह लटक गया, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो इतनी मेहनत की है ये सारा प्लान बनाने में, वो सब फेल हो जाएगा। लेकिन अक्षत उसे देखने के लिए वहां पर नहीं रुका और वहां से आगे बढ़ा, लेकिन सामने से आते हुए किसी से टकरा गया, और जिससे वो टकराया उसके साथ भी एक लड़की थी, और उस आदमी से टकराते ही अक्षत थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिर पाता इससे पहले ही सामने वाले आदमी ने उसे पकड़ लिया और कहा, संभाल कर मिस्टर अक्षत कपूर, और कितना गिरोगे? अक्षत ने उसे पकड़ कर गिरने से तो बचा लिया, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा नजर आया आदित्य उसे ताना मारते हुए बोला, क्योंकि उसके साथ ही पीछे आती हुई रागिनी भी उसे दिख गई थी और उन दोनों ने ही अभी चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था। सुनैना का ध्यान पहले उसी तरफ नहीं था, वो अपने होने वाले ट्रीटमेंट और बीमारी के बारे में ही सोच रही थी, और एकदम कहीं जैसे अपने ही ख्यालों में गुम वो चुपचाप आदित्य के पीछे पीछे चल रही थी। आदित्य ने कई बार उसका हाथ पकड़कर भी चलने की कोशिश की, लेकिन सुनैना पता नहीं क्यों पब्लिक प्लेस पर इस तरह से हाथ पकड़कर चलना अच्छा नहीं लगा, इसलिए तो उसके साथ पीछे पीछे वहां पर आ रही थी। लेकिन जब आदित्य अक्षत से टकराया तो उसका ध्यान भी उनकी तरफ हो गया, और आदित्य की ऐसी बात सुनकर सुनैना बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि अक्षत उसका आइडल है और अभी उसकी मेमोरी लॉस है, तो वो अक्षत नैना के बारे में कुछ भी नहीं जानती। सुनैना ने हैरानी से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, क्या कुछ भी बोल रहे हो? तुम जानते भी हो कितने बड़े एक्टर हैं अक्षत सर, और एक्टर से ज्यादा वो अच्छे इंसान हैं, और तुम उन्हें ऐसा क्यों बोल रहे हो? अक्षत ने खुद ही माफी मांगते हुए कहा, नो 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 प्रॉब्लम एट ऑल, एंड आई एम सॉरी, मेरा ही ध्यान कहीं और था। इतना बोलते हुए अक्षत ने अपने जेब से मास्क निकालकर अपने फेस पर लगा लिया, जिससे कि जिस तरह आदित्य और सुनैना ने उसे पहचान लिया है वहां पर कोई और उसे ना पहचाने। उसके इस तरह से माफी मांगने पर सुनैना बोली, देखो उनकी कोई गलती भी नहीं है, तुमने ही उन्हें इतना बुरा बोला और अब फिर भी वो सामने से माफी मांग रहे हैं, कम ऑन आदित्य, तुम्हें भी सॉरी कहना चाहिए। सुनैना ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन आदित्य उससे माफी मांगने या आगे कुछ भी बोलने के मूड में नहीं है। लेकिन वो वहां से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही रागिनी वहां पर आ गई और उसने अक्षत को माफी मांगते हुए सुन लिया था, तो वो अक्षत से बोली, व्हाट द हेल अक्षत, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? एक तो इसने तुम्हें गिरा हुआ इंसान बोला और तुम हो कि इतने अच्छे से बात कर रहे हो, क्यों? तुम्हारी वजह से ही उसे ये सब सुनने को मिला, लेकिन मैं तुम्हें कुछ क्यों बोल रहा हूँ, तुम तो उससे भी ज्यादा गिरी हुई हो, आदित्य ने गुस्से से रागिनी की तरफ देखते हुए कहा और तेजी से वहां से आगे बढ़ गया क्रमशः।